एक बहुत प्राचीन मंदिर के छत पर कुछ कबूतर रहते थे। बहुत ही खुशी से, राजी खुशी से रहते थे। कुछ समय के बाद वार्षिकोत्सव समीप था, इसलिए मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ। तो कबूतरों ने सोचा कि कहीं और जाया जाए, तो मंदिर को छोड़कर सभी कबूतर पास ही में जो चर्च था वहां चले गए, और सभी कबूतर उस चर्च में जो पहले से कबूतर रहते थे उनके साथ बहुत ही प्यार से रहने लगे। कुछ समय के बाद क्रिसमस आने वाला था, तो चर्च का रंग रोगन का कार्यक्रम, पेंटिंग का जो कार्यक्रम था वो था, इसलिए उन कबूतरों ने सोचा कि अभी कहीं और चला जाए। और बाजू में ही कुछ दूरी पर एक मस्जिद थी, और सारे कबूतर फिर उस मस्जिद के छत पर चले गए। वहां जो पहले से कबूतर थे वो अपने नए मित्रों को देख बहुत खुश हुए, और सभी बहुत ही खुशी से रहने लगे। थोड़े समय के बाद रमजान के दिन आए, तो क्योंकि मस्जिद का थोड़ा कार्यक्रम था, उसको ठीक करना था, मरम्मत करनी थी, तो फिर से वो सारे के सारे कबूतर वापस उसी प्राचीन मंदिर के छत पर आ गए। उस प्राचीन मंदिर के छत पर आने के बाद एक छोटे से कबूतर ने देखा कि नीचे बहुत सारा दंगा फसाद हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट हो रही है, खून खराबा हो रहा है। तो अपनी माँ को पूछता है छोटा कबूतर कि माँ, ये सब कौन है? माँ कहती है, ये मनुष्य है। कबूतर का बच्चा पूछता है, ये लोग क्या कर रहे हैं? माँ कहती है, ये लोग लड़ रहे हैं। वो पूछता है, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? तो माँ कहती है, जो लोग मंदिर जाने वाले हैं वो हिंदू है, जो मस्जिद जाने वाले हैं वो मुसलमान है, जो चर्च में जाने वाले हैं वो ईसाई है, इसलिए वो लड़ते हैं। कबूतर के बच्चे ने पूछा कि जब हम मंदिर में थे तब तो हम नहीं लड़ते थे, और जब हम कबूतर मस्जिद पे गए तब भी हम नहीं लड़ते थे, और जब चर्च में गए तब भी हम नहीं लड़ते थे, तब भी हम ना तो हिंदू हुए, ना तो मुसलमान हुए, और ना ही ईसाई। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो माँ कहती है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये नीचे रहते हैं, और हम जो कबूतर हैं हमने उस परम सत्ता का अनुभव किया है। हम जो कबूतर हैं हम ऊपर रहते हैं। हम जो कबूतर हैं हमारा तादात्म्य, हमारा संबंध उसके साथ है, और ये जो नीचे रहने वाले हैं, ये जो धरती पर रहने वाले हैं, इन्हें जिन्हें धरती की आवश्यकता है, ये सभी लड़ते हैं क्योंकि देहभान्य है, और हम शांतिपूर्वक रहते हैं क्योंकि हमारा संबंध ऊपर है। जिस सभा को आज बाबा ने देखा है, उस सभा में, उस डबल सभा में, एक तो वो थे जो कि जिन्हें धरनी धरनी की आवश्यकता है, जो कि साकार शरीरधारी है, परंतु सभा में वो भी थे जो कि फरिश्ता रूप में थे, जो कि आकारी लाइट के रूप में थे और जिन्हें धरनी की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़े से स्थान पर वो बहुत सारे थे। तो जो ऊपर रहते हैं, धरनी की आकर्षण से परे रहते हैं, अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, फरिश्ता स्थिति में रहते हैं, लाइट के रूपधारी है, लाइट के कार्ब में रहते हैं, ऐसी आत्माओं की सभा, ऐसी डबल सभा को बाबा देख हर्षित होते हैं। तो हम सभी को भी कहां रहना है? ऊपर, क्योंकि नीचे आते ही नीचे क्या है? दंगा फसाद, नीचे संस्कारों की टक्कर, नीचे तेरा है और मेरा है, नीचे मंदिर है, नीचे मस्जिद है, नीचे चर्च है। हमारा देश तुम्हारा देश, नीचे भिन्न भिन्न संस्कार है, नीचे लड़ाई है, परंतु ऊपर कोई लड़ाई नहीं है। तो उन कबूतरों की तरह हमारी स्थिति भी कैसी हो? सदा ही ऊपर। नीचे देह है, ऊपर आत्मा है, सदा उसी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, ये अभ्यास है। इस देह में रहते हुए भी, इस देह के आकर्षण, इस देह की प्राप्ति, इस देह की वस्तुएं, इस देह की वासनाएं, इस देह की इच्छाएं चित्त को, मन को अस्थिर ना करे, मन को चलायमान ना करे। तो आज कौन किसको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? स्नेह का सागर, स्नेह का सागर है, क्षमा है, सर्व ज्ञान का सागर, सर्व गुणों का सागर, परंतु है तो बिंदु, ऐसा वो परम बिंदु, ऐसा वो सागर, ऐसा वो स्नेह का सागर किसको देख रहा है? अपने स्नेही बच्चों को, स्नेही आत्माओं को देख रहा है। चाहे किसमें कितने भी अवगुण हो, परंतु वो हरेक को गुणवान देखता है। ऐसे ऐसे महारथी किसकी क्या महिमा करे? एक एक रत्न अमूल्य रतन है, एक एक अमूल्य रतन महान है, एक एक महारथी की क्या महिमा करे? वो एक ऐसा चित्रकार है कि हमारा ऐसा चित्र निकालता है कि हम में कितने भी दोष हो, परंतु उसका जो चित्र है वो बहुत ही सुंदर निकलता है। पिछले संडे की मुरली में था, ब्रह्मा बाप चित्र लेखा बन, तस्वीर खींच रहे, फोटो निकाल रहे हैं, तकदीर की तस्वीर। किसी देश के किसी एक राजा का ये दुर्भाग्य था कि उसकी एक ही आंख थी और एक ही पैर था, और उसने अपनी राज्यसभा में एक दिन ये घोषणा की कि जो मेरा अति सुंदर चित्र निकालेगा, ऐसा चित्रकार, मैं उसे पुरस्कृत करूंगा। देश 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 विदेश से बहुत सारे चित्रकार आए, पर जब राजा को देखा, ऐसा विकलांग राजा, कैसे उसका सुंदर चित्र निकाला जाए और वैसा ही चित्र निकाला जाए जैसा वो है, तो दंड के भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे विकलांग राजा का सुंदर चित्र निकल कैसे सकता है? परंतु एक बहुत ही वयोवृद्ध चित्रकार आया और उसने कहा कि मैं निकालूंगा, आपका ऐसा चित्र निकालूंगा कि आज तक किसी ने भी ऐसा चित्र नहीं निकाला होगा। राजा एक आंख से अंधा है और एक पैर उसे नहीं है, तो कैसा चित्र निकाला होगा उसने कि वो ऐसा चित्र उसने निकाला कि राजा प्रसन्न हो गया उस चित्र को देखकर, और सारे के सारे अन्य चित्रकार दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। क्या चित्र होगा वो? उस चित्रकार ने एक ऐसा चित्र निकाला कि जिसमें राजा का एक पैर मुड़ा हुआ है, राजा के हाथ में तीर कमान है और निशाने साधे हुए हैं और एक आंख बंद है। तो ऐसा वो विकलांग राजा, निखिलेश भाई, ऐसा वो विकलांग राजा, उसका ऐसा चित्र निकला कि उस चित्र को देखकर राजा प्रसन्न हो गया। उस चित्र में झूठ कुछ भी नहीं था। बाबा भी हम सब कैसे हैं, हम भी तो विकलांग हैं, हम भी तो आंख से आंख होते हुए भी अंधे हैं, अंधे थे, परंतु बाबा ने एक एक रत्न को चुना है। टीचर से मुलाकात में कहा ना, कोटों में कोई और कोई में भी ऐसी जो आत्माएं हैं वो बाप के सेवा की निमित्त बनी। तो ऐसा रूहानी नशा रहता है, रूहानी शब्द कभी नहीं भूलना। कितने अवगुण थे हमसे न मालूम, कितने गुणवान व्यक्ति संसार में हैं, परंतु उसने उन्हें नहीं चुना, हमें चुना। कुछ भी तो नहीं था, फिर भी उसने चुना। तो सभी स्नेही बच्चे कैसे पहुंचे हैं बाबा के पास? दौड़ दौड़ कर पहुंचे, एक सेकंड में पहुंचे हैं। किस आधार से पहुंचे हैं? स्नेह की शक्ति के आधार से पहुंचे। स्नेह की शक्ति की महानता और यहां पहुंचने की स्पीड में संबंध है। जितनी स्नेह की शक्ति महान, उतने ही बाप दादा के सम्मुख पहुंचने की जो स्पीड है वो महान। संबंध किसके साथ है? स्नेह के साथ। स्नेह ऐसी शक्ति है। जीवन में आए हुए सारे तूफान एक तरफ हो जाते हैं। भगवान से स्नेह, उसके घर से स्नेह, उसके यज्ञ से स्नेह, उसके मधुबन से स्नेह, उसकी मुरली से स्नेह, एक ऐसा स्नेह है कितनी भी बाधाएं आ जाए वो स्नेह आत्मा को बाप के सम्मुख, बाप दादा के सम्मुख ले आता है। इस स्नेह के रिटर्न में बाबा ने क्या दे दिया? स्नेह दिया और सहयोग दिया। देते हैं और देते रहेंगे, भगवान की प्रतिज्ञा है मुरली में। ऐसे नहीं कि दे दिया केवल, देते हैं, दिया था, देते हैं और देते रहेंगे। और कौन सी प्रतिज्ञा की है आज बाबा ने मुरली में? भगवान ने कौन सी प्रतिज्ञा की है आज? बहुत ही शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। कुंती माता, कौन सी प्रतिज्ञा की है बाबा ने? बच्चे बुलाए, प्रतिज्ञा है ना बाबा की? बच्चे बुलाए और बाप ना आए, राजीव भाई, ये हो नहीं सकता। परंतु वो बुलाना झूठा बुलाना ना हो, वो बुलाना मुख का बुलाना ना हो, हृदय की आर्तना, वो हृदय की आर्तनाद हो, वो ऐसा बुलाना हो, अंतस से निकली हुई आवाज हो, चेतना के ग्रंथम स्थान से निकली हुई आवाज हो, हृदय से निकली हुई आवाज हो, बाहरी आवाज वो नहीं सुनता। ऐसी वो व्यक्ति व्यक्त आवाज हो, ऐसी वो अनहद आवाज हो कि संसार के पांचों तत्वों को चीर कर सूक्ष्म वतन से होते हुए सीधे ही परम धाम पहुंचे उस तक। ऐसी वो आवाज उस तक पहुंचती है। Not everyone who cometh and saith, Lord, Lord, but he that doeth the will of my Father shall enter the kingdom of heaven. केवल हे प्रभु कहने वाले नहीं, मेरे मार्ग पर चल कर तो देख, सारे मार्ग तेरे लिए खोलना दूत तो कहना, मेरे लिए कुछ खर्च कर तो देख, कुबेर के खजाने तेरे लिए खोलना दूत तो कहना, मेरे लिए कटु वचन सहन करके तो देख, अमृत की वर्षा ना कर दू तो कहना, मेरे इस पथ पर आकर तो देख, शांति दूत बना ना दू तो कहना, मेरे लिए सहन करके तो देख, तुझे गुणों की खान न बना दू तो कहना, मेरे लिए गालियां खाकर तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना, मेरा बनकर तो देख, सबको तुझे सबका न बना दूं तो कहना। ये भगवान की प्रतिज्ञा पढ़ी होगी, देखी होगी, कई जगह लिखी होती है। तो आज बाबा क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि बच्चे बुलाए और बाप ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सभा में ऐसे कितने माताएं हैं जिन्होंने बाबा को बुलाया और बाबा आया ही नहीं। ऐसे कोई है कि जो बुलाती रहती है बाबा को पर बाबा आता नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब बाबा आता है। तो बाबा ने प्रतिज्ञा की है आज कि स्नेह के रिटर्न में बाबा क्या देते हैं, स्नेह देते हैं और सहयोग देते हैं, मदद करते हैं, कदम कदम पर मदद करते हैं। परंतु ऐसा अगाध विश्वास, ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसा निश्चय उस पर हो, तब उसकी मदद की अनुभूति होगी, अन्यथा नहीं। एक नवविवाहित दाम्पत्य, एक राजा और उसकी रानी कभी समुद्र की यात्रा कर रहे थे, जहाज में थे और अचानक से बहुत तेज तूफान आया। राजा भगवान का ऐसा भक्त था, इतना भक्त था कि बात मत पूछो। और जब तूफान आता है तो रानी जो होती है वो हलचल में आ जाती है, भयभीत हो जाती है, अपने पति से कहती है कि क्या तुम्हें भय नहीं लग रहा, इतनी तेज आंधी और इतनी तेज तूफान, नाव अब डूबी तब डूबी। राजा अपनी तलवार निकालता है और सीधे ही रानी के गले पर रख देता है बहुत तेजी से, और उससे कहता है कि क्या तुम्हें भय लग रहा है। वो हंसती है और कहती है मैं भयभीत कैसे हूं, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे बहुत प्यार है, तो तुमसे भय कैसा। वो कहता है, तलवार मयान में फिर रखता है और कहता है, मेरे प्रभु को भी मुझसे इतना ही प्यार है, और ये तूफान उसके हाथों की तलवार मात्र है। तो जब उसकी तलवार उठेगी तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसका मुझसे प्यार है। क्या उसके स्नेह के ऐसे हम पात्र बने हैं? क्या उसने जो कुछ कहा है वो हमने इस कदर किया है कि वो अब बाध्य हो रहा है हमें मदद करने के लिए? स्नेही बच्चों को बाप दादा स्नेह के रिटर्न में स्नेह और सहयोग देते हैं, देते रहेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने सभी बच्चों को एक वरदान दिया है, एक गीत सुनाया है, एक पाठ पढ़ाया है, सफलता के कुछ सूत्र बताए हैं। कौन सा वरदान दिया है? सहज योगी भव का वरदान दिया है। कब दिया था वरदान? सुबह 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 दिया ना वरदान। जो वरदान लिया उसके बाद ऐसे कितने हैं कि जिन्होंने देखा ही नहीं। लास्ट सीन 16-12 आवर्स बैक मैसेज आता है ना लास्ट सीन का, अपने मित्र संबंधियों के लिए क्या 5 मिनट बैक लास्ट सीन, 3 मिनट बैक लास्ट सीन, और भगवान के लिए 16 घंटे मैसेज आता है कि नहीं लास्ट सीन। तो सुबह सुबह उसने वरदान दिया था, उसके बाद भूलना नहीं है। बीच में दादी से कहा है बाबा ने, 3 स्टेजेस बताई है सफलता की, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में याद रहता है, लक्ष्य सामने है, कार्य करते हैं तो याद है, परसेंटेज अच्छी है, बीच में परसेंटेज कम हो जाती है और आखिरी आने तक तो परसेंटेज पूरी ही खत्म हो जाती है। ये जब तीनों समान हो, तीनों ही परसेंटेज समान हो तो क्या होगा? सफलता प्राप्त होगी। दादी से कहा ना आज पापा ने, तो जो वरदान उसने सुबह दिया है उसको भी बार बार याद करना है। ऐसा नहीं कि सुबह एक बार ले लिया और भूल गए। रिवीजन मन ही मन रिवाइज करते रहना है ज्ञान को, मन ही मन। तो एक वरदान, एक पाठ पढ़ाया बाबा ने। कौन सा पाठ पढ़ाया? टीचर से मुलाकात, बिंदी बनना, बिंदी लगाना, बीती से बीती से बीती को बीती करना, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये पाठ पढ़ाया। एक गीत भी सुनाया, कौन सा गीत? पाना था सो पा लिया। एक स्लोगन भी बताया, कौन सा स्लोगन? स्लोगन सच्ची दिल पर साहेब राजी। अगर सच्ची दिल हो तो सेवा में सफलता मिलेगी। तो एक वरदान, एक गीत, एक स्लोगन और एक पाठ, 4 चीजों पर मुरली आधारित है। सबसे पहले आते हैं वरदान पर। कौन सा वरदान था राजू भाई? कौन सा वरदान था? सहज योगी भव। सहज क्यों? क्योंकि बिंदु है। कितनी बिंदु की बाबा ने महिमा गाई, उस बिंदु रूप में स्थित हो जाना, उस बिंदु का अनुभव करना। बिंदु अर्थात अतिशय सूक्ष्म तत्व आत्मा के लिए कहा गया है। बिंदु, बीज, डॉट, पॉइंट, बिंदी। तो ये मात्रा कैसी मात्रा है? सहज मात्रा है। 2 उदाहरण दिए हैं, बच्चे भी पेंसिल से निकाल सकते हैं, इतनी सहज है। परंतु तुमको लगाने में मुश्किल क्यों? किसी एक अव्यक्त बाबा मुरली में बाबा ने कहा था, बिंदी लगाना तो इतना आसान है, इतना आसान है कि अंधा व्यक्ति भी लगा सकता है, और तुम तो त्रिनेत्री हो फिर भी नहीं लगा सकते। बिंदी तो अंधा व्यक्ति भी लगा सकता है। तो एक स्कूल ने बच्चों का उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण कौन सा दिया बाबा ने? भक्तों का उदाहरण दिया है, लंबी चौड़ी प्रतिमा आकार को याद करते हैं, और तुम्हें तो एक छोटे से बिंदु को याद करना है। तो मैं आत्मा बिंदु, बाप बिंदु, ड्रामा में जो भी चला, जो भी किया, जो भी दृश्य आए उसको भी बिंदु। ये 3 बिंदु लगाने हैं, बाप, आप और रचना। इस बिंदु का ही महत्व है, इस एक बिंदु शब्द की ही क्या है कमाल है, एक बिंदु शब्द ही क्या है जादू का शब्द है, एक बिंदु की ताली अगर बजाओ तो किस किस को सुनना पड़ेगा, प्रकृति को सुनना पड़ेगा, कर्मेंद्रियों को सुनना पड़ेगा, और किसको सुनना पड़ेगा, साथियों को भी सुनना पड़ेगा। संकल्प की तालियां बजाओ और सब तैयार है, बिंदी बनो और ऑर्डर करो, सब तैयार है। आत्मिक स्वरूप में जो कुछ किया जाता है, जो भी बोल बोलो, जो भी कर्म करो, जो भी भावना रखो, जो भी संकल्प करो, वो सब कैसे हो जाएंगे, श्रेष्ठ और महान हो जाएंगे, परंतु बिंदु रूप स्थिति में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ये किया जाए तो। यदि विस्तार में गए तो क्या हो जाएगा, विस्तार में गए तो जंगल है, काली काली रात है वहां पर, टेढ़ी मात्रा है वो, टेढ़ा मार्ग है वहां पर, समय और शक्तियां व्यर्थ जाएगी। इसके लिए मुरली का जो सार है वो है, बिंदु बनो और फिर विस्तार में आओ, कहीं खो ना जाओ इस विस्तार में, इस जंगल में। तो आत्मा बिंदु, परमात्मा भी बिंदु, सर्व गुणों का सागर, सर्व ज्ञान का सागर, वो है सागर परंतु है बिंदु। इस बिंदु में सब कुछ समाया हुआ है, बिंदु को पा लेना अर्थात सब कुछ पा लेना, बिंदु को जानना अर्थात सब कुछ जान लेना, बाकी सब जाना परंतु बिंदु को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, इस सृष्टि चक्र को नहीं जाना, तो कुछ भी नहीं जाना। हम आते हैं तब भी बिंदु, हम जब जाएंगे तब भी बिंदु, हमारा अनादि अविनाशी स्वरूप भी बिंदु। संबंध संपर्क में जब आते हैं तब भी क्या देखते हो, सभी कार्यकर्ता कैसे हैं, बिंदु। मस्तक में कौन है, बिंदु। सारी साधना ही इस आत्मिक स्वरूप की है, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना और सबको आत्मिक स्वरूप से देखना, इस देह की तरफ दृष्टि ना जाए। देह को देखते हैं तो विघ्न आते हैं, साकार महावाक्य है बाबा के, जब जब तुम देह को देखोगे तब तब पुरुषार्थ में विघ्न आएंगे, केवल देखने मात्र से। बिंदु अर्थात बीज, एक है बीज एक है वृक्ष, वृक्ष का सार है बीज में। शास्त्रों में बीज की बहुत महिमा है, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं लिखा है, मुक्ति का जो मार्ग है वो सरसों के बीज के समान है, और मनुष्य की मन जो है, आत्मा जो है, वो हाथी के समान है, कैसे जाएगा इस बीज से। तो मुक्ति का मार्ग भी बीज को बताया हुआ है, परंतु हाँ, जीवन में यदि कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाए तो ये जो मुक्ति का मार्ग है, ये जो सरसों का बीज है, वो बड़ा हो जाएगा। इस तरह का वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब में है, बाइबल में एक जगह लिखा है मैथ्यू में, The kingdom of heaven is like a mustard seed. सरसों के दाने मिसल है स्वर्ग का राज्य। तो स्वर्ग का राज्य भी बिंदु, मुक्ति का द्वार भी बिंदु। वो बीज बहुत छोटा है, but once it is planted, it is the largest. स्वर्ग के राज्य की तुलना बीज से की है। बीज का वर्णन शास्त्रों में भी है, हिंदू धर्म में चांडोक्य उपनिषद, उसमें भी एक जगह लिखा है, आत्मा जो है वो सरसों के बीज से बहुत 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 छोटी है। तो कहीं धम्म पढ़ा में भी लिखा हुआ है कि संसार के जो सुख है वो सुई की जो नोक है उसके ऊपर सरसों का बीज, अब गिरा तब गिरा, इतने अस्थिर, इतने अस्थाई है। संसार के सुखों की तुलना भी बीज से, मुक्ति के द्वार की तुलना भी बीज से, स्वर्ग के राज्य की तुलना भी बीज से, आत्मा की तुलना भी बीज से। तो ये बीज ही सिद्धि स्वरूप बनाएगा, ये बीज भी स्थापना का भी कारण बीज है तो विनाश का भी कारण बीज है, साइंस की शक्ति का भी कारण बीज है तो साइलेंस की शक्ति का भी कारण बीज है, निर्वाण में जाने का भी कारण बीज बिंदु है तो निर्माण का कार्य भी बीज है। तो निर्माण और निर्वाण, मून पर भी जाते हो तो कौन जाता है? बीज। तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का की नॉलेज भी किसमें है? बीज में है। 84 जन्म के वैरायटी पार्ट भी किसमें है? बीज में है। 5000 साल का चक्र भी किसमें है? बीज में है। कभी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे कहते हैं कि सतयुग के वो संस्कार इमर्ज नहीं होते, क्या करें? बाबा ने उत्तर दिया है कि निरंतर आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करो तो स्वतः ही, क्योंकि आत्मा ही थी ना सतयुग में, यही तो आत्मा थी वहां पर, तो बीच के जो संस्कार है वो हटते जाएंगे और वो सारे संस्कार इमर्ज होने लगेंगे अपने आप, अपने आप वो दिव्यता, अपने आप वो प्यूरिटी के संस्कार आने लगेंगे। अभी जो देह भान के संस्कार है उस वजह से देह का आकर्षण हो रहा है, परंतु जैसे ही उस आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास बढ़ेगा तो वो सारे संस्कार इमर्ज होने लगेंगे, सारे के सारे संस्कार। तो बीज, बिंदु, पॉइंट, डॉट, सब कुछ इस आत्मा में ही है, सब कुछ यह आत्मा ही है, फुल स्टॉप। क्या कहा बाबा ने? ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना। बिंदी बाप के साथ कहाँ चलना है? बिंदियों के घर, वहां पर भी हर आत्मा में क्या लगी हुई है? बिंदी। कौन सी तीन चीजों को बिंदी लगी हुई है? कर्म, संकल्प और संस्कार। तो अभी सभी एक मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे। इस देह के भान से परे संपूर्ण आत्मिक चेतना में स्थिर होना, स्वयं को आत्मा समझना, बिंदु समझना, बिंदु बाप के साथ स्वयं को उस बिंदु के देश में ले चलना है जहां पर बिंदी लगी हुई है, जहां पर वो परमात्मा भी बिंदु है, और उससे उस स्नेह की अनुभूति करनी है। तो एक मिनट के लिए सभी उस बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे। शांति। देह से बाहर निकलना और फिर इस देह में आना, यही अशरीरीपन का अभ्यास अंतिम समय में कार्य करेगा, काम में आएगा। बार बार स्वयं को इस देह की चेतना से, देह के भान से अलग करना और उस अव्यक्त धाम का अनुभव करना, उस सूक्ष्म वतन का और उस परम धाम का अनुभव करना, ये हमारी सर्वोत्तम साधना है। बाबा ने कहा है विस्तार में नहीं जाना है, एक तरफ है सार, एक तरफ है विस्तार। चाहे कोई भी विस्तार हो, चाहे वो ज्ञान का ही कितना विस्तार हो, चाहे वो सेवाओं का ही कितना विस्तार हो, किसी भी तरह का विस्तार आत्मा को भटकाएगा। उसमें क्या और क्यों के प्रश्न आएंगे, जिसमें टेढ़ी मात्रा है, टेढ़ा मार्ग है वहां पर, और उसी में उलझ जाना, उसी में फंस जाना, उसी को सार समझ लेना, ये संगम युग पर बुद्धिमानी नहीं है। इस समय सबसे बुद्धिमान वो है जो कि जिसे सार का आकर्षण है, इस बिंदु का आकर्षण है। बिंदु का आकर्षण भी तब होगा जब ऐसा त्याग और ऐसा वैराग जीवन में हो, उसके सिवा नहीं। नहीं तो ये संसार बार बार खींचते रहता है, संसार के देहधारी, संसार की वासनाएं, संसार के विकार, काम विकार, ये छोड़ते नहीं है मनुष्य को। अशरीरी बनने का अभ्यास भाग्यवान बच्चे ही करते हैं, तो यही अभ्यास करना है। विस्तार में जितना जाएंगे उसमें फंस जाएंगे। विदेश में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था, जॉर्ज गुरजियफ, उसने एक अपनी कहानी लिखी है। जॉर्ज गुरजियफ रूस का बहुत बड़ा दार्शनिक, उसने लिखा है कि एक राजा कभी एक जंगल गया अपनी सारी सेनाओं को लेकर, और वहां पर शिकार के लिए, आखेट के लिए, और किसी एक स्थान पर रुका, और जहां रुका फिर दस्तरखान, दावत के लिए जो कपड़ा डालते हैं, उसके भोजन का समय हुआ तो सारे पंच पकवान निकाले गए क्योंकि उसके भोजन का समय था, और ये खबर वहां के चींटियों के, देश की चींटियों को पता चली, तो चींटियों में जो उनके गुप्तचर और जासूस थे चींटियों के, उन्होंने वो देखा कि इतनी रंग बिरंगी पकवान, इतनी सुगंध, और जाकर अपने बाकी साथियों को खबर दी और ऐसा वर्णन किया कि इतने सारे पकवान थे, बाकी साथी तो कुछ ऐसे हुए कि कुछ तो पागल ही हो गए केवल वर्णन सुनकर, अभी तो पहुंचे ही नहीं है उस पकवान के पास, केवल वर्णन सुना है कि वो ऐसे सुंदर सुंदर रंग बिरंगी और स्वादिष्ट पकवान है और ऐसी उनकी सुगंध है, तो वो ही झूमने लगे और गाने लगे। राजा ने जब देखा कि चींटियों का ये क्या हाल हो रहा है, कहीं ये धोखा तो नहीं, राजा ने कहा नहीं मैं खुद जाऊंगा, चींटियों के राजा ने, और अपने दो तीन वजीरों को लेकर वो राजा पहुंचा और देखा कि वास्तव में ऐसे ही रंग बिरंगी पकवान है। पर उसे एक चिंता होने लगी क्योंकि चींटियों के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं था कि उन्होंने ऐसे पकवान कभी देखे, और चींटियों की जो दशा थी कुछ कुछ पागल होने की कगार पर थे। तो राजा ने सोचा कि अगर ये सारी चींटियां वहां चली जाए तो पता नहीं इनका क्या हाल हो जाए। तो उन्होंने एक युक्ति रची, एक ऐसी युक्ति रची कि वो सारे पकवानों का एक नक्शा बनाया और चींटियों को ये बताया कि ये वो सारे पकवान हैं, और वो सारी ही चींटियां उस नक्शे पर नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी, और थोड़ा सा सुगंध भी छिड़क दिया वजीरों ने। अब उनको ये ख्याल ही चला गया कि कहीं और थे पकवान और कहीं और जाना भी था, उन्होंने समझा कि ये जो नक्शे है बस यही वो है सब कुछ, और सुबह से लेकर रात तक चींटियां बस वहीं पर नाचती रही, उछल कूद करती रही, जॉर्ज गुरजीएफ ने लिखा है, जो उन चींटियों के साथ हुआ है वही मनुष्य जाति के साथ भी हुआ है आज। उन्हीं कुरान को पकड़ लिया, उन्हीं शब्द को पकड़ लिया, उन्हीं गीता को पकड़ लिया, उसी बाइबल को पकड़ लिया और सार खो गया और समझा कि यही वो सार है। और उसी विस्तार में व्यक्ति भटक रहा है और भटक रहा है और सोचता है हमने सार को पा लिया, परंतु वो उसका भटकाव मात्र है। हमने भी ऐसे ही बहुत सारे नक्शे तैयार किए हैं, या संसार ने, समाज ने, राष्ट्र ने, विश्व ने हमें ऐसे नक्शे हाथ में दिए हैं और हम भी उन्हीं चींटियों की तरह उछल कूद कर रहे हैं। कुछ नक्शे सेवाओं के भी नक्शे, पंच पकवान तो कहीं और है और उन सेवाओं में ही हम जैसे कहीं खो गए हैं, और उस सेवाओं में भी फिर वो नम्रता का भाव नहीं है, वो सेवाएं भी वो जैसे पार्टियों में कहा ना टीचर्स को, अहंकार है, अभिमान है, घमंड है, वहां जैसे खो गए इन सेवाओं में। इन सेवाओं के जंगल में खोना नहीं है, त्याग, तपस्या, वैराग निरंतर बना हुआ हो और वो हमें सदैव उसी आत्मा की साधना, उसी अशरीरीपन की साधना, उसी बीज रूप स्थिति का अभ्यास, उसी पांच स्वरूपों का अभ्यास हमसे होता रहे, ये हमारी मुख्य साधना है। तो बिंदी समझना, बिंदी को याद करना, बिंदी लगाना, बिंदी के विस्तार में ना जाना, विस्तार में जाना है तो बिंदी समझना, फिर विस्तार में जाना। तो ये बाबा ने बिंदी का विस्तार यहाँ किया। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो ज्ञान का विस्तार है, वास्तव में इसकी भी आवश्यकता नहीं है, परंतु ज्ञान को समझने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए, उसमें रमन करने के लिए, कहा था ना कुछ दिनों पहले, सारे दिन भर ये ज्ञान बुद्धि में क्या करो, सिमरन करते रहो। साकार मुली ज्ञान की बुलबुल बुद्धि में क्या करे, टिकलू टिकलू करती रहे। तो विस्तार भी यदि करना है तो ज्ञान का, और फिर तुरंत वापस उस बिंदु में आ जाना है। टीचर्स से बाबा ने क्या कहा, रूहानी सेवाधारी। हम स्वयं को सभी सेवाधारी कहते हैं, परंतु देखो सेवाधारी के लिए कितनी सारी बातें हैं। ये सारी बातें जब होगी तब हम स्वयं को सेवाधारी कह सकेंगे। सेवाधारी के लिए संपन्न बनना है। सेवाधारी दाता हो, सेवाधारी ऑलराउंडर हो, सेवाधारी एवर रेडी हो, सेवाधारी सर्वशक्तिवान हो। ऐसा नहीं कि जो शक्ति हम में कम है हम दूसरों को वो कैसे दे सकेंगे, जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे। सेवा अर्थात दूसरों को सुख देना, सेवा अर्थात स्वयं संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करना, ये सेवा है। ऐसी सेवा किस काम की जिसमें हम स्वयं असंतुष्ट और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो सभी दुखी, वो सभी असंतुष्ट, वो सभी डिस्टर्ब। ऐसी सेवा के कोई मार्क्स नहीं। सेवा के लिए स्वयं को भरना है, संपन्न बनाना है स्वयं को, सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से। गुरुवार के दिन वरदान था एक, कौन सा, जो बच्चे मुख से ज्ञान का, ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उनके साथ सात आठ बातें हो जाती है, कौन सी। और इस यज्ञ में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दादी जान की जी। जो बच्चे मुख से ज्ञान का दान करते हैं कौन सी सात आठ बातें हो जाती है, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का जैसे वरदान प्राप्त हो जाता है। उनके बोल शक्तिशाली होते हैं, उनके बोल प्रभावशाली होते हैं, उनके बोल में अमूल्य हो जाते हैं, उनके बोल में जैसे कि आत्माएं प्यासी रहती है उनको सुनने के लिए। खुशी का खजाना, सर्व खजानों से भरपूर, मालामाल, संतुष्ट और विशेष खुशी की उन्हें प्राप्ति होती है। उनके शब्द में वैल्यू क्या आ जाता है, मूल्य, प्रभाव आ जाता है और विशेष मूल्य हो जाता है उनके शब्दों में। वाचा में शक्ति भर जाती है, गुण आ जाते, बहुत बड़े गुण आ जाते हैं, इतनी सारी बातें हो जाती है। यदि मुख से ज्ञान रत्नों का दान करो तो स्वयं को संपन्न बनाना, ज्ञान से भरना, योग से भरना, शक्तियों से भरना, ये कार्य है हमारा, तो ही हम सेवा कर सकते हैं। ऑलराउंड हर प्रकार की सेवा, इसका भी उदाहरण, एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दादियों में से परदादी का ही है। मोची का भी काम किया, मैकेनिक का भी काम किया, गाड़ी चलाने का भी काम किया, तो इंजीनियरिंग का भी, इंजीनियर का भी काम किया, हर प्रकार की सेवा की। ऐसा कोई भी कार्य है नहीं जो उन्होंने नहीं किया, हर कार्य किया, हर कार्य जो कहा बाबा ने वो किया। बाबा ने एक बार कहा, जाओ बच्ची होम मिनिस्टर के पास से किसी बंगले की चाबी लेके आओ। सीधा दादी होम मिनिस्टर के पास, गाड़ी चलाते हुए 15 साल की बच्ची, और सीधा कहा कि कितना अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि मुझे होम मिनिस्टर से मिलना है, इतनी ऑथोरिटी के साथ। वो उसे लेके गए, कोई बेबी आई है मिलने, होम मिनिस्टर ने पूछा क्या चाहिए, उसने कहा चाबी दो। क्या कहा? चाबी दो। उन्होंने समझाया बाद में देंगे, छोटी बच्ची है। उन्होंने कहा नहीं, बाबा ने कहा है चाबी लेकर ही आना, तब तक मैं जाऊंगी नहीं। फ्रॉक पहने हुए, खुले बाल, और बहुत अच्छा वो वार्तालाप जो कि किताब में भी वर्णन है दादी के। और फिर वो होम मिनिस्टर, आश्चर्य हो उसको, इतनी ऑथोरिटी से ये बोल रही कि चाबी लेकर ही जाऊंगी। और फिर उनका जो असिस्टेंट था उसको भेजा और कहा कि इसको दिखा के आओ, बहुत सारे कमरे खाली है। तो एक बंगला जिसमें 16 कमरे थे, तो दादी को वो दे दिया उन्होंने, और दादी तभी वापस गई वो चाबी लेकर। कितनी ऑथोरिटी के वो बोलते, और कैसा वो नशा हो गया उनका। तो ऑलराउंड सेवाधारी, एवर रेडी, जब बोला तब, कोई बहाना नहीं। ऐसे संपन्न जब होंगे तो संतुष्ट रहने का आधार दाता भी है, तो संपन्न भी है, तो दाता भी बनना है। ऐसा नहीं कि संपन्न है परंतु दान नहीं कर रहे तो भी संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्ट, दाता, संपन्न, सर्वशक्तिवान, ऑलराउंड, एवर रेडी, सेवा लेनी नहीं है किसी से, यह भी विस्तार किया है बाबा ने। सेवा लेनी नहीं है, आज ये हुआ कल ये हुआ, इसका विस्तार करना, किससे कहानियां खत्म करो, बचपन के दिन समाप्त करो, कचेरी नहीं लगाओ, अब बड़ों का एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है, नहीं तो जब देखो तब चले और कंप्लेन करने। ये भी क्या है, जैसे सेवा लेना है, देखो सेवा लेना की कितनी सूक्ष्म परिभाषा बाबा ने दी है। बार बार किसी के पास जाना और अपनी समस्याएं सुनाना, अपनी राम कहानी, ये भी बड़ों का क्या है, समय लेना, ये भी नहीं करना है। तो फिर से आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, और जो सच्चे सेवाधारी की बातें कही है बाबा ने, जो बातें सुनाई हैं, उनको बुद्धि में रखेंगे। और जो मुरली का थोड़ा सा भाग बाकी है वो ट्रैफिक कंट्रोल के बाद पूरा करेंगे। तो मैं रूहानी सेवाधारी हूँ, इस समान में स्थित रहना है, और जो जो बातें अभी सुनाई उसी का मनन करना, चिंतन करना, उस आत्मिक स्वरूप, उस बिंदु स्वरूप में स्थित होकर उन्हें याद करना है।
भर लीजिए से भर लीजिए।
विशेषता बाबा ने बताई है वो है नम्र चित्त, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, स्वयं झुकने वाले जो है वही औरों को भी झुका सकते हैं, किसी भी बात का अभिमान अहंकार नहीं। तो ये सेवाधारी की सारी ही बातें जो बाबा ने कही है उन्हें बार बार रिवाइज करनी है, बार बार मन में लानी है। फिर उसके बाद बाबा ने दादी से बात की और क्या कहा, सफलता की कुछ बातें सुनाई। सफल कब होंगे, तीन बातें चाहिए, स्वयं हल्के, साथी हल्के और वायुमंडल भी हल्का। ऐसा जब डबल लाइट स्थिति होगी तो क्या होगा, लाइट हाउस बनेंगे। अगर बोझ है तो क्या होगा, निर्णय शक्ति कम हो जाएगी। इसके लिए हल्का रहना, ऐसी सेवा न करना कि जो हमें भारी कर दे। सेवा में ऐसे बोल न बोलना कि जो बोलने के बाद योग ही खत्म हो जाए शाम का या दूसरे दिन अमृत वेले का। उसके लिए जो तीन स्टेजेस बताई, मध्य, शुरुआत, मध्य और अंत, तीनों ही में लक्ष्य समान हो, इमर्ज हो, तीनों ही चीजें समान हो। शांति कुंड की बात की है बाबा ने, अनुभूति करे आत्माएं, वृत्ति ही बदल जाए उनकी। और फिर संगम युग की थोड़ी महिमा की, यहाँ पर श्रेष्ठ आत्माएं हो, श्रेष्ठ प्रालब्ध पाने वाली आत्माएं, अधिकारी आत्माएं हो, इसको कभी भूलना नहीं है। क्योंकि तुम कौन हो ये याद रहे तो समर्थ आत्मा बनेंगे, माया जीत और विघ्न विनाशक। कल कौन सा दिन है, गणेश चतुर्थी है ना, तो किसकी स्थापना होने वाली है कल विश्व भर में और विशेष भारत भर में, विघ्न विनाशक। वो एक दंत कौन है, हम। वो वक्रतुंड कौन है, हम। वो लंबोदर कौन है, हम। वो गजमुख, गजकर्ण, गजनेत्र, विघ्नेश्वर, सारी विश्व जिसकी पूजा करने वाला है। स्थापना पालना कार्य दुर्वा चढ़ाते हैं ना, मूषक चूहा जिसका वाहन है वो कौन है, हम। पांचों ही विकार जिनके अधीन है। कर और एक महत्वपूर्ण दिन है, वो कौन सा? कल शिक्षक दिन भी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का यादगार। भारत के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बनने से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस चांसलर थे, वाइस चांसलर बनने से पहले प्रोफेसर थे, और प्रोफेसर बनने से पहले टीचर थे। एक टीचर प्रेसिडेंट बन गया। संकल्प। तो कल सुबह भी अमृत वेले हमारा टीचर कौन है? तो सुबह सुबह अमृत वेले टीचर से थोड़ी रूह रियान करना, टीचर के रूप में। कल बाबा को किस रूप में याद करना है? शिक्षक के रूप में याद करना है। उसने हमें क्या क्या शिक्षाएं दी है, उन शिक्षाओं को याद करना है। और स्वयं को भी याद करना, किस रूप में? गणेश के रूप में याद करना स्वयं को, कि मैं कौन हूं? विघ्न विनाशक गणेश। थोड़ा चक्कर लगा के आना, जहां पे भी गणेश की प्रतिमा हो तो समझना ये कौन है, मैं हूं। किसकी पूजा कर रहे हैं लोग? लक्ष्मी नारायण भाई हमारी। तो ये समान है, इसको याद रखना। विदाई के समय बाबा ने एक होमवर्क दिया है, कौन सा होमवर्क? 16 कला संपूर्ण, 16 श्रृंगार धारी, ये होमवर्क दिया है ना। इसमें भी फिर और एक बात कही है, जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो करते हो वो क्या हो? समान हो। उसके लिए केवल सोचना नहीं है, केवल बोलना नहीं है। पिछले संडे की सारी मुरली किस पर थी? यही एक अंतर है। किसी की माला नेकलेस, किसी की जमीन तक पाव तक, किसी की लड़िया और किसी की इतनी बड़ी है कि ड्रेस बन गई है। ये अंतर क्यों था? किसी का क्यों कम चमक रहा था? किसी का वो चमक, वो जो रंग थे, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, सफेद रंग, अलग अलग थे। उसी आधार पर क्यों हो रहे थे? क्योंकि अंतर था। अंतर कौन सा था? ताजा खाना और रखा हुआ खाना, हॉट और कोल्ड, दान पुण्य अब और कब, ये अंतर था ना। सोचना और करना, आज बीच में एक तीसरा शब्द जोड़ा है, सोचना बोलना और करना तीनों ही क्या हो? समान हो। केवल संकल्प करने से नहीं होगा, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको। अभी अभी जो ओलंपिक्स हुई है उसमें तीन उदाहरण ऐसे हैं भारत के, भारत की तीन बेटियां। अभी अभी रियो ओलंपिक्स हुई है, सबसे पहला तो वीना मलिक, 12 साल से वो तैयारी कर रही है, 12 साल से मेहनत, 12 साल की मेहनत के बाद कहीं जाकर उसको अभी वो ब्रॉन्ज मिला है। सिंधु, सिंधु जो है वो पिछले 3 मास से बताया है कि मोबाइल यूज नहीं किया, सुबह से लेकर रात तक प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। तीसरा दीपा, उसको 1000 times उसने वॉल्ट की प्रैक्टिस की, वो जो जिम्नेशियम की 1000 बार, तब कहीं जाकर उसको वो मिला। तो ऐसा ही नहीं होता है, ये बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी साधना। वो तो संसार की ओलंपिक से, ये जीवन की ओलंपिक से, तपस्या की ओलंपिक है, यहां कितनी बड़ी साधना करनी पड़ेगी। वो तो छोटा सा ब्रॉन्ज, छोटा सा गोल्ड प्राप्त करने के लिए वो सब करना होता है उनको। तो ये तो जीवन की ओलंपिक से, चाहे वो साक्षी हो, चाहे वो सिद्धू हो, चाहे वो दीपा हो, चाहे वो जयशा हो, उन्होंने जितनी मेहनत की उससे कई गुना ज्यादा तो मेहनत हमें यहाँ करनी है तब। परंतु आज बाबा ने कहा ना, इच्छा मात्र में विद्या होना पड़ेगा, बाकी सारी इच्छाएं इस इच्छा के बीच में आती है संपन्न होने की, यही अंतर है। तो मुरली का सार, बिंदु स्वरूप की साधना, बिंदु आत्मिक स्वरूप की साधना, आत्मिक दृष्टि की साधना, आत्मिक बाबा को याद करने की साधना, ड्रामा को बिंदु लगाने की साधना, बीती सो बीती करने की साधना, सच्चा दिल, रूहानी सेवाधारी, लौकिकता ना हो कर्मों में, अलौकिकता हो फरिश्तेपन की स्मृति हो, ये सारी ही बातें मुरली में कितने सारे, ढेर सारे शब्द, एक एक शब्द का घंटों विस्तार किया जा सकता है। परंतु इनको समझना है, इसकी गहराई में जाना है और उन बातों में रमन करना है और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ कर देना है, कि संसार की छोटी छोटी बातें हमें प्रभावित ही ना करे, आए और वो चली जाए जैसे हम यहाँ है ही नहीं। निरंतर वह स्मृति की अब जाना है बिंदु के देश। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, ऐसे अनादि अविनाशी स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, ऐसे योग युक्त युक्ति युक्त जीवन मुक्त आत्माओं को, मुरली में एक जगह युक्ति युक्त भी है, का अनुभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे बिंदु स्वरूप से खजानों के सार को पाने वाली आत्माओं को, ऐसे बिंदु स्वरूप के महत्व को सदा जान सदा महान रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। आधा मिनट के लिए फिर से उसी बिंदु स्वरूप में सभी स्थित हो जाएंगे।